एक अपराधी से आम आदमी तक का सफर, एक ऐसे इंसान की कहानी जो अब दूसरों को प्रेरित करने के लिए भी तैयार हो गया है।
टुडे आई हैव विद मी राहुल जाधव, अ मोस्ट वांटेड प्रोफेशनल क्रिमिनल हु बिकेम अ टॉप मैराथन रनर। हे फॉक्स, वेलकम बैक टू माय न्यू एंड अ डेडली पॉडकास्ट। डू मेक इट अ पॉइंट टू हिट लाइक, शेयर एंड कमेंट। डू गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द ऑल नोटिफिकेशंस बटन। इट वाज बैक इन 2015, देन अ 39-year-old राहुल जाधव, अ फॉर्मर हिटमैन working with an underworld don in Mumbai, was serving his term at the Muktangan Rehabilitation Center. वो इस वक्त भी शराब और नशीले पदार्थों की लत पर काबू पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। It was during this time his counselor Habiba Jetha wanted him to channelize his anger and frustration somewhere else. जब जेठा ने जाधव से पूछा कि वो किस चीज में सबसे अच्छे हैं, तब उन्होंने तुरंत जवाब दे दिया, रनिंग। उनका ये जवाब स्पॉन्टेनियस था और वो अनायास ही उनके दौड़ने के इतिहास के कारण आया। जेठा अरेंज फॉर जाधव टू पार्टिसिपेट इन अ 10 किलोमीटर मैराथन इन पुणे। जाधव प्रिपेयर्ड फॉर द मैराथन एंड रन दोस 10 किलोमीटर इन 55 मिनट्स। एंड अपने जीवन में पहली बार उन्हें लगा कि उन्होंने कुछ अच्छा हासिल, दैट वॉज हिज फर्स्ट स्प्रिंट टू फ्रीडम। I am excited to have an interesting conversation with Rahul. You guys also stay with me and let's see how it all flows. मोस्ट वांटेड क्रिमिनल रह चुके हैं मुंबई के, पर आज की डेट में आप एक सक्सेसफुल टॉप मैराथनर है। आपके जो ट्रांसफॉर्मेशन रहा है बहुत ही फेनोमिनल रहा है एंड आई एम श्योर कि ये काफी लोगों को इंस्पायर करता है। आपको अपराध की दुनिया में वेंचर करने के लिए किस चीज ने एंकरेज किया, ये जानते हुए कि ये काफी जोखिम भरा काम है?
एक्चुअली पढ़ाई में मैं थोड़ा कमजोर था, तो मैंने आजू-बाजू में देखा ये लोग पैसे कमा रहे हैं, को इज्जत मिल रही है, भले वो डर के मारे सब लोग रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं उन लोगों को, लेकिन वो पैसा कमा रहे थे, उनके पास पावर था, लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं थे। तो वैसे लोग पैसे कमा रहे, इज्जत कमा रहे, कैसे भी लेकिन कमा रहे, और मैं पढ़ाई में बहुत पीछे हूँ, तो मैंने वो एक इनकम सोर्स का जरिया पकड़ लिया और उसमें रिस्क थी, लेकिन मैंने उसको इग्नोर किया। वैसे मैं उसकी तरफ खींचता चला गया, क्रिमिनल वर्ल्ड की तरफ और एंटर हो गया।
क्या आप इसके साथ आने वाले जोखिम से डरते नहीं थे?
कैसा होता है कि पहले तो डर लगता है, लेकिन धीरे धीरे उन लोगों के साथ रह के उसकी आदत हो जाती है। जैसे हम लोग रनिंग करते हैं तो पहले पहले बहुत तकलीफ होती है रनिंग की, लेकिन हम लोग जब रोज प्रैक्टिस करते हैं तो उसकी आदत हो जाती है, तो हम फास्ट भी दौड़ सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस भी कर सकते हैं। ऐसे इसमें रोज रिस्क उसके बारे में सोचना, तो उसके हम लोग हैबिचुअल हो जाते हैं, तो किसी भी चीज का डर नहीं लगता, कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखते फिर। और एक चीज भी होती है, मतलब धीरे धीरे एंटी सोशल हो जाने के बाद दुनिया चेंज हो जाती है, रूल्स अलग हो जाते हैं, प्रिंसिपल्स अलग होते हैं, तो ये दुनिया में जो रूल्स होते हैं वो लोग फॉलो नहीं करते, तो उस दुनिया में जो चलता है वही उसको लगता है कि यही अपनी दुनिया है। तो मतलब लोगों को तकलीफ देके पैसा कमाना ये एक इनकम सोर्स का जरिया है, एक प्रोफेशन है, ऐसा लगने लगता है जैसे वकील है, डॉक्टर है, सीए है, उन लोग पैसे कमा रहे हैं, वैसे हम लोग पैसे कमा रहे हैं, ये प्रोफेशन है, ऐसे धीरे धीरे लगने लगता है ऐसा है। तो उसमें रिस्क लगता ही नहीं, ये मेरा काम है, जैसे डॉक्टर का काम है, पुलिस का काम है, वैसे ये मेरा काम, ऐसे उन लोगों के साथ रह के मतलब एक पेयर, वो पेयर्स में वैसे ही लगने लगता है, बाद में कुछ गलत कर रहा है, ये कुछ हमसे अलग है, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता, हमें ऐसा लगता है लोग अलग है।
अग्री। आपके जीवन में कौन सा ये टर्निंग पॉइंट था दैट ब्रॉट यू ऑन द ट्रैक?
ये धीरे धीरे होता है, पहले क्रेज था, एक क्यूरियोसिटी थी और एक इनकम सोर्स का जरिया था, तो इनकम हो रहा था, पैसे मिल रहे थे, डर के मारे रेस्पेक्ट दे रहे थे लोग, सब लोग इन फेमस हो रहा था, और वो हाई जो है वो मैं बार बार ले रहा था। हुआ क्या, जितना चाहिए था उतना मिल रहा था, लेकिन जैसे ही मिल रहा था वो सब पैसा, इन फेमस, वो जो सेलिब्रिटी स्टेटस था इन फेमस का, मैन पावर था, वो जैसे मिल रहा था वैसे ये छूट रहा था। फैमिली दूर जा रहे, दोस्त दूर जा रहे थे, कोई मेरे साथ टाइम स्पेंड करना नहीं चाहता था, तो ये सब दूर होने लगा, ये नजदीक आने लगा और धीरे धीरे मैं समाज से बाहर हो गया। तो मैं जब पीछे मुड़ के देखा तो मैं जिनको इम्प्रेस करना चाहता था, मैं जिनके सामने ये मेरा पावर दिखाना चाहता था, उनके सामने जा ही नहीं पा रहा था क्योंकि पुलिस पीछे थी और मैं शहर छोड़ के अलग स्टेट में जिधर मुझे कोई पहचानता ही नहीं था। तो मैं बोला इसका फायदा क्या, अभी इतना सब मैं कमा रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ और जिनको दिखाना है वो तो मीलों दूर है, तो इसका फायदा मुझे कुछ है नहीं, ना ही मेरे पास मेरी फैमिली है, तो जो चाहिए वो मिला ही नहीं। तो मुझे डर मिला, दुख मिला, लोगों की वो जो हाय थी वो मिली, मतलब लोगों को तकलीफ दे के पैसा कमाने के बाद मेरी नींद उड़ गई, तो मेरा नशा ज्यादा चालू हो गया। फिर मुझे पुलिस ने पकड़ा और जिस पुलिस को मैं दुश्मन समझ रहा था उसी पुलिस ने मेरी मदद की, जिस सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को मैं जिसके खिलाफ मैं काम कर रहा था मतलब इनडायरेक्टली, तो वही गवर्नमेंट ने मुझे वकील दिया, सरकारी वकील, वही गवर्नमेंट ने मुझे 3 साल कोसा जेल में, और वही पुलिस ने, मैं अंदर था और मेरी फैमिली बाहर थी, तो उसको प्रोटेक्ट किया, मैं तो नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहा था मेरी फैमिली को। तो मैंने सोचा मैं इतना करने के बावजूद भी समाज ने मेरे लिए इतना किया और मैं क्या कर रहा हूँ, तो मुझे धीरे धीरे रियलाइज होने लगा ये सिस्टम क्या होता है। तो लॉ का भी पढ़ाई किया मैंने, तो मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि मतलब माँ बाप और ये समाज ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, तो हम कोई अलग नहीं है, इस दुनिया के ही लोग है सब लोग, हमारी कुछ अलग दुनिया नहीं है, हम लोग गलत काम कर रहे हैं, तो ये सिस्टम में रह के सिस्टम के जैसा ही रहना जरूरी है। तो लॉ हमारे लिए है, हम लॉ खुद नहीं बना सकते, ये लॉ हमारे लिए है, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये जब धीरे धीरे मुझे समझा तो मैं रेडी हो गया कि बाबा अब नॉर्मल लाइफ जीने के लिए ट्राई करें, लेकिन वैसे नहीं हुआ क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ था मैं तैयारी कर रहा था, प्रिपेयर हो रहा था, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं सुधर गया हूँ और वो लोग पहले ही जैसे मेरे साथ बिहेव कर रहे थे, ऑब्वियसली वैसे ही करेंगे ना, तो पुलिस और लोग मेरे साथ वैसे बिहेव कर रहे थे जिसका मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन उनके हिसाब से वो ठीक कर रहे थे। और फिर उसको मैं फेस नहीं कर पाया और डिप्रेशन में गया और फिर मेरा नशा चालू हो गया। फिर नशा चालू हो जाने बाद वो छुड़वाने के लिए मुझे घर वालों ने डी एडिक्शन सेंटर में एडमिट किया। वो डी एडिक्शन सेंटर में एडमिट करने के बाद वहां पे मैंने हेल्प की पेशेंट्स की, फिर काम किया बहुत। तो धीरे धीरे काम करने के बाद में आजू बाजू में देखा तो सब लोग काम कर रहे थे, काउंसलर्स थे, डॉक्टर थे, तो वो लोग अच्छा लाइफ जी रहे थे, मैं भी काम कर रहा था। तो मैंने देखा कि मार्केट में मेरे लायक क्या काम हो सकता है, तो ऑब्जर्व किया कि मैं हाउसकीपिंग कर सकता हूँ, सिक्योरिटी गार्ड, डिलीवरी बॉय, ये सब काम कर सकता हूँ मैं, लेकिन मैं वापिस वही लाइफ जीऊंगा जो मैं जीना नहीं चाहता था, ऐसे सोच रहा था। तो ये सब पकाव लाइफ है, ये सब मुझे नहीं चाहिए था, तो ऐसा सोच रहा था, लेकिन मुझे वो जीना पड़ रहा था। लेकिन हुआ क्या, उधर काउंसलर ने रनिंग के लिए सबको पूछा कि मैराथन है करके, तो पुणे में एक मैराथन था, उसके लिए प्रैक्टिस करना जरूरी था, और मैंने फर्स्ट टाइम रस्ते पे, हमारे आलंदी रोड पे रस्ते पे मैं उतरा और दौड़ना चालू किया। तो फर्स्ट टाइम मैं जब रस्ते पे दौड़ा तो मुझे बचपन याद आया, तो मैं गांव में खेतों में दौड़ता था, पहाड़ों में दौड़ता था, जंगल में दौड़ता था, बचपन में मैं डोंबोले में जो जहाँ पैदा हुआ वहां पे ग्राउंड पे दौड़ता था, मेरे दोस्त थे, तो वो सब मेमोरीज रिकलेक्ट हो गई, मतलब याद आया मुझे वो सब, और बहुत अच्छा लगा मुझे रास्ते पे दौड़ते हुए, और कनेक्ट हो गया मैं उस शहर से, पुणे से मैं कनेक्ट हो गया, लोगों से कनेक्ट होने लगा, मेरा कनेक्शन ही टूट गया था समाज से, लेकिन दौड़ने की वजह से मेरा कनेक्शन जुड़ गया वापिस, और मुझे बहुत अच्छा लगा दौड़ने के बाद, तो मुझे मजा आ रहा था दौड़ने के लिए, इसके लिए मैं दौड़ा, तो मेरी सेटिस्फेक्शन हैप्पीनेस की डेफिनेशन चेंज ही हो गई। तो बोला मुझे ये चाहिए, मुझे मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे ना ही इज्जत चाहिए, मुझे मजा करना है, तो वो मजा मुझे रनिंग में आ रहा था, ना ही मैं अटेंशन सीकिंग था तभी, तो मैं खुद के लिए दौड़ रहा था, और एक मतलब हवा, आकाश और जमीन, इसके साथ मेरा ये हो गया, मतलब कनेक्शन जुड़ गया ना, तो नेचर से बहुत नजदीक आ गया मैं रनिंग की वजह से। और फिर मैं सोचने लगा ये क्या किया मैंने, लाइफ क्या है, तो लाइफ का मीनिंग मुझे समझ में आया रनिंग की वजह से। और फिर मैं दौड़ना चालू किया, मेरा नशा तो छूट ही गया, उसके बाद में मेरा लाइफ का गोल धीरे धीरे चेंज हो गया। तो मैंने रेस्ट ऑफ द लाइफ अभी माँ बाप के लिए जीना ही डिसाइड किया, तो मेरा जो सेल्फ टॉक था धीरे धीरे पॉजिटिव हो गया। तो टर्निंग पॉइंट मेरा रनिंग है, रनिंग की वजह से मेरे में बदलाव आया, मेरा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन चालू हो गया और मैं पॉजिटिव होते गया। अभी भी मेरा जो स्ट्रेस में हैंडल करता हूँ, एंगर हैंडल करता हूँ, मेरा जो गोल ओरिएंटेशन है उसमें जो कंसिस्टेंसी रखता हूँ वो रनिंग की वजह से। मैं रोज रनिंग करता हूँ, इसके लिए मैं आज जिंदा हूँ और हेल्दी हूँ, मेंटली भी और फिजिकली भी। मेरे ख्याल से ये जो टर्निंग पॉइंट है ये रनिंग है मेरे लाइफ में।
So your mantra for self-control is running.
Yes, running.
Truly Rahul, realization has hit you hard. वो मराठी में कहावत है ना कि परिस्थिती हा एक उत्तम शिक्षक आहे, तर तुमच्या बाबतीत मला तेच वाटतं. आय एम ग्लॅड यू फाउंड अ पर्पज इन युअर लाईफ.
Yes.
So Rahul, how has the transformation impacted you?
अच्छा लगा, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि आज मैं नॉर्मल लोगों की तरफ, जिनके मतलब मैं जब 10वीं में था तो मुझे कम परसेंटेज मिलते थे, और मुझे रियलाइज हो गया था कि मैं सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील नहीं बन पाऊंगा और ये लोग सब बड़े हो जाएंगे और मैं इनके पीछे, स्पोर्ट्स में भी पीछे, हर चीज में पीछे में। तो आज मैं उन लोगों के साथ में जब काम करता हूँ, मैं एक बीए साइकोलॉजी किया हूँ, एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी सीख रहा हूँ, और आज उन लोगों के साथ में मैं काम कर रहा हूँ, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के पुलिस के साथ काम करता हूँ, मैं अवेयरनेस करता हूँ। तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आज वापिस वो लाइफ छोड़ के ये लाइफ में मतलब सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, हैप्पीनेस मिल रहा है, और अच्छे तरह से मैं मेरी फैमिली को संभाल रहा हूँ और रिस्पेक्ट भी मिल रहा है मुझे और मेरी फैमिली को। ये जो डिसीजन लिया मैंने वो गलत नहीं था, और मुझे भी कोई तकलीफ नहीं है, ना ही मेरी फैमिली को तकलीफ है, और जिनके साथ मैंने काम किया उनको भी मेरे से कुछ ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि मैंने किसी को हर्ट नहीं किया है, मैं मेरा लाइफ शांति से जी रहा हूँ, मेरी वजह से किसी को तकलीफ नहीं है। तो छोड़ने की वजह से आज मैं वो लाइफ छोड़ने की वजह से आज मैं खुश हूँ, शांति से सो रहा हूँ, मुझे भूख लग रही है और मैं सबको हेल्प कर रहा हूँ।
सर राहुल, कभी कभी आपको ऐसा फील नहीं होता, या ऐसा कभी एक पुल फील होना या एक टेम्प्ट करना कि फिर से क्रिमिनल की लाइफ में चले जाए?
वापिस वहां जाने के लिए फील नहीं हुआ, क्योंकि मैंने वो लाइफ बहुत नजदीक से देखी थी, कॉन्सिक्वेंसेस मैंने देखे थे। तो मतलब आज लोगों को मैं देखता हूँ, मतलब यंगस्टर्स को जो पुणे में रैश ड्राइविंग करते है, छोटी छोटी बात पे खून करते है, मतलब साइड भी नहीं दिया गाड़ी को तो गाड़ी फोड़ देते हैं, तो उनको मैं मतलब कॉन्सिक्वेंसेस वो नहीं देखते। आज मैं मुझे गुस्सा आया तो भी फट से कॉन्सिक्वेंसेस सामने दिखते हैं, तो मैंने वो सब एंड देखा है, मैंने लोगों का एनकाउंटर देखा है, मैंने लोगों को पनिशमेंट के बाद जेल में रोते हुए देखा है, सिर दीवार पे पटकते हुए देखा है, बड़े बड़े लोग जो राज करते हैं बाहर, लेकिन जब उनको अरेस्ट करने के बाद कन्विक्शन होता है तो वो रोते हैं, उनकी बीवियां उनको छोड़ के चली जाती है। तो वो एक्चुअल लाइफ, रियल लाइफ, वो जो फैक्ट है वो मुझे पता चला। ये जो बाहर का जो हरियाली है ये यंगस्टर्स को अभी दिखता है, जो मुझे दिख रहा था पहले, मैंने वो फैक्ट देखा है, रियल लाइफ देखा है, अंडरवर्ल्ड क्या होता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, और लॉ कितना स्ट्रिंजेंट है, मतलब लॉ के आगे कोई नहीं है, तो मुझे ये पता है सब। तो इसके लिए मेरे दिमाग में आता ही नहीं कि मैं लॉ के अगेंस्ट जाऊं, और दूसरी बात मैं रेस्पेक्ट करता हूँ लॉ की, क्योंकि लॉ ने मुझे प्रोटेक्ट किया, तो मेरे से ये कुछ होता ही नहीं। मतलब मैं आज भी, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रहेगा तो मैं बाहर नहीं जाता, मैं वापस रिटर्न आके घर से ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाता हूँ। पुणे में विदाउट हेलमेट लोग ड्राइविंग करते हैं, लेकिन मैं हेलमेट पहनता हूँ, तो रूल्स फॉलो करता हूँ मैं आज, मेरी कभी कभी कोई कोई कलीग्स या फिर दोस्त बोलते हैं, अरे हेलमेट काहे के लिए चाहिए, इधर तो जा रहा है तू, तो मैं हेलमेट पहनता हूँ। कभी कभी सिग्नल भी जंप करने की, मतलब सब लोग इधर उधर नहीं देखते, सीधा जंप करते हैं, मैं सिग्नल जंप नहीं करता, क्योंकि वो अपने मेरे अंदर ही आ गया वो डिसिप्लिन इसकी वजह से, तो अभी मेरे स्वभाव में ही वो आ गया, तो इसके लिए मैं लॉ के अगेंस्ट कुछ करता ही नहीं, वो अनुभव से मैं सुधर गया।
Makes sense. So Rahul, what do you do for a living right now?
अभी मैं एक फ्रीलांस काउंसलर करके काम करता हूँ पुणे में, चार पांच नशा मुक्ति केंद्र है, एडिक्शन सेंटर्स, वहाँ पे मैं लेक्चर लेता हूँ। और अभी एम ए साइकोलॉजी फर्स्ट ईयर में हूँ इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी में, और दो साल के बाद में डी एडिक्शन छोड़ के और जगह काम कर सकता हूँ। और आज एनजीओ अभी मैंने ओपन किया है, एनजीओ का काम जनवरी में चालू होगा, शालिनी जाधव फाउंडेशन, और एनजीओ के जरिए मैं डी एडिक्शन कैंप्स हर जिले में ऑर्गेनाइज करूंगा, ब्लड डोनेशन कैंप्स और मैराथन ऑर्गेनाइज करूंगा। और जो लोग जेल से बाहर आए हैं और उनको हेल्प चाहिए सेल्फ रिलायंट होने के लिए, जिनको लीगल हेल्प की ज़रूरत है, और जो एडिक्ट्स हैं उनको घर नहीं है, उनको सेल्फ रिलायंट होना है, तो उनके रिहैबिलिटेशन के लिए मैं हेल्प करूँगा। तो ये सब एनजीओ के जरिए हो सकता है, तो वो मैं जनवरी 2023 से चालू करूंगा।
इंटरेस्टिंग। सो राहुल, आपके जो करीबी लोग हैं उन्हें कैसा फील होता है आपकी इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर?
बहुत अच्छा। आज माँ नहीं है मेरी, एक साल हो गया मेरी माँ गुजर गई, तो उसका बहुत ये था सपोर्ट, अगर माँ नहीं होती तो आज मैं बाहर नहीं होता। तो माँ ने और मेरे पिताजी ने बहुत झेला है, क्योंकि बार बार पुलिस घर पे आती थी, अलग अलग जिले की पुलिस घर पे आती थी, रात रात को आती थी, और माँ को मेरी साइकेट्रिक की गोलियां चालू हो गई थी। तो जब मैं अभी ठीक हो गया, तो आज मतलब दो साल पहले मेरी माँ को, मतलब पेपर में मुझे देखा मेरी माँ ने, न्यूज चैनल में देखा मेरी माँ ने, तो पहले जब आता था न्यूज चैनल न्यूज़पेपर में तो एक बुरखे में आता था मैं, और एक गैंगस्टर करके नाम आता था, और आज एक एथलीट करके रिहैबिलिटेटेड और रिफॉर्म ऐसे आता है ना, तो मुंबई दिल्ली दौड़ा तभी भी माँ ने देखा न्यूज़पेपर वाले थे, चैनल वाले थे, तो माँ को बहुत अच्छा फील हुआ कि बाबा ये इसके साथ कोई रहता था, तो उसकी माँ मुझे बोलती थी कि तुम्हारे बेटे के साथ नहीं रखना, मतलब हर एक माँ बोलती थी कि वो राहुल के साथ मत रहना, तो माँ को बुरा लगता था। आज लोग बोल रहे हैं कि राहुल के साथ रह, उससे कुछ सीख, उसका सपोर्ट ले, उसकी मदद ले, तो ये आज माँ सुनती है ऑपोजिट एकदम, तो माँ को बहुत अच्छा लगता था, तो माँ बोली कि यही चाहिए था मुझे और कुछ नहीं, तो नजदीक के मतलब हाँ, तो मेरी माँ को, मेरे पिताजी को, मेरे दोस्तों को बहुत अच्छा लगता है।
That's really nice to know, Rahul. So, Rahul, आपके आने वाले कुछ plans या कुछ projects के बारे में आप बता सकते हैं?
अभी तो रनिंग में कुछ एक गोल रखा है मैंने, तो 24 hours stadium run है, तो उसके लिए मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दूसरा है मेरा एनजीओ खुद का, वो मैं चालू कर रहा हूँ, और अभी तो फिलहाल मैं महाराष्ट्र स्टेट के लिए वो एनजीओ के जरिए काम करूँगा, लेकिन धीरे धीरे अल्ट्रा मैराथन के जरिए मैं ऑल ओवर इंडिया जितने भी एडिक्ट्स है, जितने भी हैबिचुअल ऑफेंडर्स है, उनके लिए काम करना चाहता हूँ। तो ये मेरे प्लान्स है कुछ। अभी फिलहाल तो हम मतलब मैं और मेरी बीवी हूँ इस संस्था में, धीरे धीरे जुड़ जाएंगे, तो अलग अलग स्टेट से सिर्फ रनर से नहीं, तो रिकवरिंग एडिक्ट और रिफॉर्म क्रिमिनल्स ज्वाइन हो जाएंगे। तो प्लान्स ये है कि सब्सटेंस डिमांड रिडक्शन ये प्रायोरिटी पहले रहेगा, और धीरे धीरे सप्लाई रिडक्शन में हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे, यानी कि अगर डिमांड रिडक्शन के लिए हम लोग मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी सप्लाई हो रहा है ड्रग्स का, तो उसको रोकना भी जरूरी है। तो एक ड्रग्स और एक अल्कोहल प्रोहिबिशन, तो उसके लिए हम लोग वो आंदोलन, वो कोर्ट में पीआईएल ये करना, अप्लाई करना, ये सब आंदोलन के जरिए चालू होगा, तो उसके लिए बहुत टाइम है। लेकिन नशा पूरा नशा मुक्त इंडिया करने का ये सोच है महाराष्ट्र राज्य सरकार के साथ में और भारत सरकार के साथ।
अमेजिंग एंड एक्साइटिंग प्रोजेक्ट राहुल। सो राहुल, एक लास्ट सवाल आपके लिए, व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू समवन हु वांट्स टू टेक द रूट ऑफ क्राइम बिकॉज ऑफ नीड्स फॉर क्विक सक्सेस?
जो लोग क्राइम करना चाहते हैं, मतलब दो टाइप के लोग हैं क्रिमिनल्स, एक है जो एक एज ए प्रोफेशन चूज करना चाहते हैं क्राइम के, और दूसरे होते हैं कि एक ईगो होता है, एक अटेंशन सीकिंग बिहेवियर रहता है और उसमें वो हाई मिलता है उनको, लोगों के ऊपर रोब जमाना, लोगों को धमकी दे के किसी को उछलाना, तो उनमें उसको मजा आता है। तो मैं दोनों भी तरीके के लोगों को यही समझाना, मतलब एक एडवाइस दूंगा कि किसी को हर्ट करने से अच्छा किसी को अगर आप हेल्प करते हो ना, तो उसमें आनंद ज्यादा मिलता है। और लोगों से जब जुड़ जाते हैं हम लोग, तो लोग सपोर्ट करते हैं, तो लोगों से हम लोग जब झगड़ा करते हैं तो धीरे धीरे हमारा सपोर्ट निकल जाता है। तो और सपोर्ट जो है वो एक चींटी भी करती है और हाथी भी करता है, तो कोई भी सपोर्ट करता है तो उसको कमजोर नहीं समझना चाहिए। तो सिर्फ बलवान लोगों को, मतलब अमीर लोग, बलवान लोग जो है उनका ही सपोर्ट जरूरी है, ऐसा नहीं होता। समाज में अलग अलग फील्ड में अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, अलग अलग स्वभाव के लोग होते हैं। अगर हम सबके साथ रहेंगे तो फिर हम ज्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं। ऐसा मतलब एज ए प्रोफेशन क्राइम चूज करने से अच्छा एज ए सोशल वर्कर अगर आप प्रोफेशन चूज करेंगे तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, मैं बोलता हूँ। तो लोगों को मारने से अच्छा लोगों की मदद करो, उसमें आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि लोग खुश होते हैं तो ज्यादा पैसा देते हैं।
फॉर सोसाइटी विद सोसाइटी, वंडरफुली सेड राहुल।
थैंक यू सो मच।
सो राहुल, एट दिस मोमेंट आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू फॉर योर विलिंगनेस टू कम टू माय पॉडकास्ट। आपकी बातें सुनकर बहुत सरप्राइज फील हुआ कि लाइक आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, बहुत ही फेनोमिनल रहा है। एंड आई एम श्योर कि इस चीज में सेल्फ कंट्रोल भी बहुत लगा होगा, जैसे आपने बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज बताई कि आपको आपने अपने आपको डिसिप्लिन कैसे किया, कौन सी चीजें थी जिसने आपको एंकरेज किया। सो आई एम श्योर दिस पॉडकास्ट इज गोइंग टू बी इंस्पायरिंग फॉर एवरीवन। सो थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम एंड योर एफर्ट्स टुडे टू कम ओवर हियर।
थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय पर्सनल स्टोरी। तो मैं कभी मतलब ना नहीं बोलता किसी को मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में बताने को, क्यों? क्योंकि बहुत मैंने किसी की लाइफ स्टोरी सुनी और उससे मुझे मोटिवेशन मिला। तो मुझसे अगर कोई किसी को मोटिवेशन मिलता है, और कोई भी रिकरिंग एडिक्ट या क्रिमिनल अगर एक मेरे पॉइंट से उसको क्लिक होता है और वो अच्छी राह पे जाता है, तो मेरा लाइफ सफल हो गया, ऐसा मैं मानता हूँ।
राहुल, आई होप कि आपको पॉडकास्ट पसंद आया।
हाँ, बिल्कुल अच्छा था, मतलब ऐसा कोई चीज नहीं थी जो ऑब्जेक्शनेबल थी, आपने कोई भी ऐसा वर्ड यूज नहीं किया जिसकी वजह से कुछ कठिनाई आए।
आई एम ग्लैड कि आपको पसंद आया राहुल। सो लेट अस स्टे कनेक्टेड एंड लुक फॉरवर्ड फॉर अ लॉन्ग एंड लास्टिंग रिलेशनशिप।